डॉक्टर कैसे हैं बड़े पापा? ईशान ने चिंता भरे स्वर में सवाल किया और आंखों में उम्मीद लिए उन्हें देखने लगा। डॉक्टर ने सबके गमगीन खौफजदा चेहरों को देखा और गंभीरता से बोले, केस बहुत क्रिटिकल था, पेशेंट का बचना नामुमकिन था। अगर उन्हें लाने में थोड़ी सी और देर होती तो शायद हम उन्हें बचा नहीं पाते, पर सही वक्त पर उन्हें एडमिट करवाया गया। उनका ऑपरेशन सफल रहा, अब वो खतरे से बाहर हैं, फिलहाल बेहोश हैं, 24 घंटे में उन्हें होश आ जाएगा। उसके बाद उनकी आगे की जांच होगी और सब ठीक रहा, रिकवरी ठीक से हुई, तो एक हफ्ते में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इतनी देर से सबकी जान हलक में अटकी हुई थी, सभी खौफजदा थे। एक डर सबके मन में घर बनाए बैठा था कि कहीं रामविलास जी को कुछ हो ना जाए। डॉक्टर ने जब उनके खतरे से बाहर होने की बात कही तब जाकर सबको उस डर और खौफ से कुछ राहत मिली, पर वे अभी पूरे तरह से रिलैक्स भी नहीं हुए थे कि डॉक्टर के आगे के शब्द उनके कानों में पड़े और उस सुकून पर डर के बादल छाने लगे। अभी वो भले ही खतरे से बाहर हैं पर खतरा अभी टला नहीं है। पेशेंट को ज्यादा स्ट्रेस लेने के कारण हार्ट अटैक आया है। ऐसे में आपको खास ध्यान रखना होगा कि उनके सामने कोई ऐसी बात ना की जाए जिससे उनकी हालत और बिगड़े। जितना हो सके उन्हें खुश रखने की कोशिश करनी होगी, तभी वो पूरे तरह से रिकवर कर सकेंगे। हम ध्यान रखेंगे डॉक्टर, ईशान ने ध्यान से उनकी पूरी बात सुनते हुए हामी भरी। फिर आगे बोला, क्या हम अब उनसे मिल सकते हैं? अभी वो बेहोश हैं, जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता किसी को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं है। 24 घंटे उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, उनकी कंडीशन स्टेबल होगी तभी आपको उनसे मिलने की इजाज़त मिलेगी। डॉक्टर इतना कहकर वहां से चले गए। रामविलास जी को ओटी से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। सब उस दरवाजे पर लगी छोटी सी कांच की खिड़की से ही उन्हें देख रहे थे। चारों ओर से मशीनों से घिरे वे बेजान से हॉस्पिटल बेड पर लेटे थे। शायद सुरेखा जी के सालों बाद यूं अचानक लौटने के कारण उन्हें बीती सभी बातें याद आ गई थीं और वही स्ट्रेस वो हैंडल नहीं कर सके। उम्र हो गई थी, अब तो शरीर जवाब दे गया। कौशल्या जी अब भी उन्हें देखकर आंसू बहा रही थीं। ईशान कुछ और फॉर्मेलिटी पूरी करने गया था। कुछ देर बाद वो लौटा और सबको एक नज़र देखते हुए रजनी के पास चला आया। दीदी, आप सबको लेकर घर चले जाइए, बड़े पापा से अभी वैसे भी किसी को मिलने की इजाज़त नहीं, यहाँ मैं रहूँगा उनके पास, बाकी सब बेवजह ही परेशान होंगे। बड़े पापा को होश आता है तो मैं फ़ोन कर दूंगा, तब ले आइएगा सबको, बेवजह हॉस्पिटल में भीड़ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। ईशान की बात ठीक थी और रजनी समझ रही थी उसकी बात। उसने किसी तरह कौशल्या जी को मनाया और सबके साथ घर के लिए निकल गई। ईशान वहीं ओटी के बाहर लगी चेयर पर अपना सर थाम कर बैठ गया। शुभ्रा और शुभिका जब उठीं तो उन्हें सारी बात मालूम चली, जिससे दोनों ही परेशान होकर और डर कर रोने लगीं। कशिश ने बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाला, जबकि परेशान और डरी हुई तो वो खुद भी बहुत थी। एक एक मिनट बिताना बहुत भारी पड़ रहा था उसे। तब से कई बार ईशान को फ़ोन कर चुकी थी पर तब तक ऑपरेशन नहीं हुआ था। उसने घड़ी में टाइम देखा और एक बार फिर ईशान को फ़ोन लगा दिया। ईशान जो अपना सर थामे बैठा था, कल से लेकर आज तक जो हुआ उस पूरे घटनाक्रम को मन में दोहरा रहा था। अचानक फ़ोन बजने से चीहूंकते हुए अपने ख्यालों से बाहर आया। फ़ोन निकालकर देखा, स्क्रीन पर कशिश का नाम चमकते देखकर उसने ठंडी आह भरी और कॉल रिसीव करते हुए जैसे ही फ़ोन कान पर लगाया, दूसरे तरफ से कशिश की बेचैनी भरी आवाज़ आई। मिश्रा जी, क्या हो रहा है वहाँ? कैसे हैं बड़े पापा? ऑपरेशन हो गया उनका? वो ठीक है ना? खतरे की कोई बात तो नहीं? मैं भी वहाँ आ जाऊँ? मुझे बहुत चिंता हो रही है और मन भी बहुत घबरा रहा है। बड़ी मम्मी कितनी दुखी होंगी, मुझे भी उनके पास होना चाहिए। बोलिए ना मिश्रा जी, मैं आ जाऊँ। बड़े पापा ठीक है? ऑपरेशन सफल रहा ना? कशिश एक बार शुरू हुई तो रुकने का नाम ही नहीं लिया। परेशान सी एक सांस में सब बोलती चली गई और उसकी बातों में ईशान रामविलास जी के लिए चिंता, कौशल्या जी के लिए डर और फिक्र महसूस कर रहा था। कोई नहीं लगते थे वे लोग उसके, फिर भी उनकी चिंता में इतनी परेशान थी वह। कशिश चुप हुई तो उसने गंभीरता से शांत लहजे में जवाब दिया, शांत हो जाओ कशिश, यहाँ अब सब ठीक है। बड़े पापा का ऑपरेशन सफल रहा, अब वो खतरे से बाहर है, चिंता की कोई बात नहीं है। अभी बेहोश है तो किसी को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं, 24 घंटों के बीच उन्हें होश आ जाएगा, इसलिए मैंने बाकी सबको भी घर भेज दिया है। तुम्हें भी अभी यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ रहो और बाकी सबका ध्यान रखो, सब बहुत परेशान हैं, तो उनका सहारा बनो। बड़े पापा को होश आ जाए फिर आ जाना उनसे मिलने। ईशान ने बड़े पापा के ठीक होने की खबर दी तब जाकर कशिश की जान में जान आई। उसने मन ही मन महादेव का धन्यवाद दिया, फिर चिंतित स्वर में बोली, मिश्रा जी आप ठीक हैं? आप नहीं आएंगे घर? मैं ठीक हूँ और फिलहाल तो नहीं आऊँगा, यहाँ बड़े पापा के साथ रुका हूँ। तो क्या आप होके ही रहेंगे? कशिश ने माथे पर बल डालते हुए परेशान लहजे में सवाल किया और दूसरी तरफ से ईशान का भावहीन जवाब आया, मुझे अभी भूख नहीं, तुम बस घर पर सबका ख्याल रखना, मैं अपना ध्यान रख लूंगा, और भूखी मत रहना मेरे लिए, मैं यहीं से कुछ खा लूंगा। चलो फोन रखो और नाश्ता बनाओ, सब पहुंचने ही वाले होंगे। ईशान ने कशिश के जवाब का भी इंतजार नहीं किया और फोन काट दिया। कशिश ने मुंह बनाया और रसोई की ओर चली गई।
शुभ्रा शुभिका की मदद से वो जल्दी जल्दी खाना बना ही रही थी कि सब घर पहुंच गए। कौशल्या जी ने तो रो रोकर अपना बुरा हाल कर लिया था। कशिश ने उन्हें सांत्वना दी और नहाने भेज दिया। कुछ देर में सब नहा धोकर फ्रेश होकर आए, पहले मंदिर में पूजा की, महादेव से प्रार्थना की, फिर कशिश की जिद पर मन ना होते हुए नाश्ता किया। कौशल्या जी को चाची आराम करने ले गईं, जबकि कशिश ने ईशान के कपड़े, जरूरत के सामान के साथ उसके लिए खाना पैक करके रजनी के हाथ हॉस्पिटल भेज दिया और खुद बाकी काम निपटाने लगी। मन तो बहुत था उसका हॉस्पिटल जाने का, रामविलास जी को देखने का, पर अभी यहाँ सबको संभालना उसके लिए ज्यादा जरूरी था।